خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ایک ایسی عبادت جس کو کرنے کے لیے عالم اسلام کے اندر، بلکہ روئے زمین میں مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا مسلمان اگر دیکھا جائے تو یہ ارمان دل میں رکھتا ہے کہ مجھے یہ عبادت کرنے کی سعادت ملے، اور وہ عظیم عبادت ہے اسلام کا بنیادی رکن حج۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، احکام حج پروگرام کے اندر آپ نے احرام کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی، آپ کو اویئرنیس دی گئی احرام کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، حج کی تیاریوں کے حوالے سے، احرام کی احتیاطوں کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے، سعی کے حوالے سے، الحمدللہ رب العالمین اویئرنیس دی گئی ہے۔ حج کے 5 دنوں کے اندر جو 16 مصروفیات بنتی ہیں، وہ کون سی ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو کب ادا کرنا ہے، کس وقت ادا کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس اعتبار سے آج کے پروگرام میں حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور اس پر ہماری انشاءاللہ رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سفر ہوتا ہے نا، تو سفر کے اندر حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں،
گرمی ہے تپ ہے درد ہے، الفت سفر کی ہے،
تپ ہے، کلفت یوں کہہ لیجئے ایک مشقت سفر کی ہے۔ سفر میں بندہ کبھی کبھار چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گھر جیسا آرام بندے کو بعض اوقات مل نہیں پاتا، موسم ہے تو ویدر ہے، ویدر کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ گرمی عرب شریف کی، سبحان اللہ، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور گرمی شریف کی بھی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، تو اس میں بعض اوقات بندہ جو ہے یہ ناشکری والے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ناشکری والے الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں بولنے۔ گرمی اگر لگ رہی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکہ پاک کی گرمی پر جو صبر کرے گا، اللہ تعالی اسے جہنم سے دور فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں، زبان پر شکوہ و شکایت یہ نہ آئے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالی کی قضا پر اور اس کی جو ہے وہ انعامات پر نظر رکھتے ہوئے، قضاء پر راضی رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اور اس کے انعامات پر نظر رکھتے ہوئے اپنا سفر ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھاتا چلا جائے، اور کاش کہ یہ تصور بھی لے آئے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ مشقت برداشت کرنا، یہ گرمی برداشت کرنا، یہ پیدل چلنا، یہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ان اچھے جذبات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صبر 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 اور پھر صبر، اور اس کے بعد بھی کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ حضرت قبلہ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. نعت خوان اس ٹائم سے کچھ اشعار جو ہے وہ کلام کے سنتے ہیں.
بن یا نبی آہا
اللهم آتنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا آمين يا رب العالمين. اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق والی شوق والی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حج کے دنوں کی پانچ دنوں کی جو 16 مصروفیات ہیں اس پر انشاءاللہ الکریم ہم مفتی صاحب سے تفصیلی طور پر بات کریں گے، اور شارٹ سوال جیسے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رہیں گے. سب پہلا سوال یہ فرمائیں کہ حج تمتع کرنے والے نے عمرہ جو ہے وہ کر لیا، اب بعض اوقات دن جو ہے وہ بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں 6 دن ہیں، 8 دن ہیں، 10 دن ہیں، بعض لوگوں کو تو 15 دن بھی حج سے پہلے جو ہے وہ مل جاتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. تو بندہ سوچتا ہے یار وقت جو ہے نا یہ گزر نہیں رہا. یہ بتائیں کہ جب عمرہ کرنے کے بعد کیفیت کیا ہونی چاہیے، کام کیا ہونے چاہیے، اور جب بندہ پھر حج کا احرام باندھے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے.
مکہ مکرمہ میں شخص موجود ہے اس کی تو سعادتیں چاروں طرف، جہاں رخ کرے گا سعادتوں کے سامان پائے گا. معلومات ہونا ضروری ہے. دیکھیں ایک تو دو چیزیں تو بڑی مشہور ہیں کہ اس کو عمرہ کرنا ہے یا طواف کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کیا کرے.
جی
تھوڑا سا یہ کسی دن نکلے صحیح کی طرف سے، اور سب سے پہلے جو مروہ ہے تو مروہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر دروازے کو پیٹ کرے اور تصور کرے کہ تھوڑا ہی آگے جا کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان یہاں موجود تھا.
اللہ اکبر.
اس کی فضاؤں سے لذت حاصل کرے، درود پاک پڑھے وہاں کھڑا ہو کر، اور تصور لے کر آئے کہ یہ وہ گھر ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما تھے. اچھا یہاں پر آپ کا جو ہے وہ رہائش گاہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا، اور سیدھے ہاتھ پر جو دروازے بنے ہوئے ہیں باب عباس، باب دار ارقم، باب فلاں، یہ دروازے اس مناسبت سے ہیں کہ یہاں پر ان صحابہ کے مکانات ہوا کرتے تھے.
نہیں
جبل ابو قبیس پیس کے سامنے ہے.
سبحان اللہ.
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا تھا. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، وہ مکان عالی شان ہے اللہ اکبر جس کی عظمتوں پر ہماری جانیں فدا ہوں.
اللہ اللہ.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جس گھر میں ہوئی،
سبحان اللہ،
آج کل وہاں لائبریری ہے، اور یہ وہ گھر ہے جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. مولود کی گھڑی ہے چلے آمینہ کے گھر پر.
سبحان اللہ. سبحان.
ہم ایک تصور میں ایک نقشہ کھینچتے ہیں نا کہ مولود کی گھڑی، مولود کے دو معنی ہیں، گھڑی بھی ایک معنی ہے یعنی وقت، اور جگہ بھی ایک معنی ہے.
نہیں.
تو 12 ربیع الاول تاریخ کے اعتبار سے میلاد ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ جگہ ہونے کے اعتبار سے میلاد ہے.
واہ واہ.
تو وہ مکان عالی شان، اس کی زیارت کرے، اس کی فضاؤں کی زیارت کرے، اور وہاں کھڑے ہو کر درود السلام پڑھے، پھر ذرا دل کی جانب بڑھ جائے. مسجد جن ہے، مسجد رایا ہے، یہ وہ مقامات ہیں جو آثار نبویہ میں سے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھ جائے جنت المالا آئے گا، جہاں پہ ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار بھی ہے. باہر کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرے، اس کی دیوار تو نظر آتی ہے اوپر جا کر، یعنی اوپر دیوار نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ اس مبارک قبرستان میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے مزارات ہیں، تابعین کے مزارات ہیں، صالحین کے، اقطاب کے، قطب کے، نہ جانے اللہ کے کون کون سے ولی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے بارگاہ میں سلام عرض کرے. کتنی سعادت کی بات ہے، یہ سلام کہے گا وہاں سے جواب سلام ملے گا.
واہ واہ واہ.
یعنی ان پاکیزہ افراد کی طرف سے جواب سلام ملنا کتنی سعادت کی بات ہے. تھوڑا اور آگے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، حج کے بعد کام آئے گا. تھوڑا اور آگے چلا جائے تو مسجد اجابہ واقع ہے. مسجد اجابہ وہ مسجد ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب منیٰ کا قیام کیا اور وہ قیام پورا ہو گیا، آپ نے 13ویں کی رمی بھی فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی میں پہنچے. وادی محصب اسے کہتے ہیں، آج کل یہ جعفریہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ جو مسجد اجابہ ہے یہ اس جگہ واقع ہے جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آ کر آرام فرمایا اور قافلہ یہاں پر آ کے رکا. تو فقہ نے لکھا ہے کہ حج کے بعد یہاں آ کے کچھ دیر قیام کرنا سنت موقعہ ہے. جب یہ واپس چلے گا جی خانہ کعبہ کی طرف آنے لگے گا
جی,
اب ذرا جی تھوڑا سا اوپر جو پہاڑ چڑھ رہا ہے جرگل کا علاقہ وہاں پر چاہے تو وہاں چلا جائے. وہاں پہ مقام طوا ہے, وہ مبارک کنواں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجت الوداع کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اس کنویں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا, رات یہاں گزاری, اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا, احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام شریف کی طرف بڑھے. مکہ مکرمہ میں مقام حدیبیہ بھی واقع ہے, مکہ مکرمہ میں غار حرا بھی واقع ہے جہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت سیرتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو نیت یہ کرے, یعنی غار ثور موجود ہے, کہ آثار نبوی کی میں پیروی کر رہا ہوں, یعنی ان کا تتبع کر رہا ہوں, ان کو جا کے دیکھ رہا ہوں کہاں ہیں آثار نبوی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے, یہاں سے آپ گزرے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی نشانیاں ہیں. تو اس کا ایمان تازہ ہوگا. مکہ مکرمہ میں جب آپ حدیبیہ کے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر حدیبیہ سے تھوڑا پہلے, کوئی 5-7 منٹ ڈرائیو پہلے, میوزیم بھی ہے مکہ میوزیم کے نام سے. تو اس میوزیم کے اندر ویسے تو خانہ کعبہ کے پرانے دروازے اور جو آب زمزم پر ڈول ڈالا جاتا تھا اس کا جو ہک ہے وہ رکھا ہوا ہے, پرانے زمانے کے پتھر رکھے ہوئے ہیں. جس کو جتنا معلوم ہے وہ اسی قدر جان پائے گا کہ کیا کیا چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. پرانے بادشاہوں کے, عباسی دور کے بادشاہ, ان کے ناموں کے تختیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں جس زمانے میں موجود ہوا کرتی تھی. وہ مصحف شریف کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور وہ آپ تلاوت کر رہے تھے, اس کی کاپی رکھی ہوئی ہے. اس کے جو اصل ہے وہ استنبول میں موجود ہے, اس کی کاپی کروائی گئی, وہ کاپی یہاں پر رکھی ہوئی ہے. یعنی اس کے خط تو پتہ چلیں گے کہ اس دور میں جو قرآن پاک تھا بغیر اعراب کے تھا, بغیر نقطوں کے تھا, اس کا خط کیا تھا. تو پھر آپ کے خون مبارک کے نشان بھی موجود ہیں, کیونکہ شہید کا جو خون ہے وہ پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا, وہ نشان بھی موجود ہیں. اور چونکہ یہ تو کاپی ہے, جو قدیم ترین چیز یہاں رکھی ہوئی ہے جو میں دیکھ پایا
جی,
وہ خانہ کعبہ کا ایک ستون ہے. یعنی جو اندر جو کعبہ شریف ہے اس کی جو چھت ہے وہ ستونوں پر کھڑی ہے, لکڑی کے ستونوں پر کھڑی ہے. تو ایک ستون جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے, تو وہ ستون ایک رکھا ہوا ہے, اس کی بھی زیارت کرے تو یعنی اس کے اندر بھی ایک یاد ہے, خانہ کعبہ کے اندر کا نظارہ اور اندر مس, مطلب اس ستون کی کے مقدر پر آپ غور کیجئے, عین کعبہ کے اندر وہاں کی مسحور فضائیں, وہاں کی منور فضائیں, اس میں ایک عرصہ دراز تک رہا. تو اس کی بھی کیا عظمت ہوگی, عظمت ہے جبھی تو رکھا ہوا ہے وہاں پر,
ایسے ہی
ورنہ کیوں رکھتے.
صحیح.
عظمت ہے جبھی تو رکھا ہوا ہے. کچھ پرانی چیزیں بھی موجود ہیں, جیسا کہ ایک پوئٹری میں نے دیکھی, ایک تصویر, میں تو اس تصویر کو عجوبہ کہتا ہوں, کوئی 250 سال پرانی بنائی ہوئی ہے. تو اس میں جو مصور ہے, کوئی انسانوں کی تصویر تو نہیں ہے.
صحیح.
اس نے پرانے مکہ مکرمہ کا نقشہ کھینچا ہے اور 3D انداز میں باقاعدہ مکانات بنائے ہیں, یہ فلاں مسجد, یہ فلاں مکان, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ. اور جہاں آج لائبریری ہے وہاں لکھا ہوا ہے مولد النبی.
اللہ اللہ اللہ, واہ واہ واہ.
اگر کوئی کہتا ہے کہ یہاں نہیں تھی, یہ جگہ نہیں تھی, تو اس میوزیم میں رکھی ہوئی یہ تصویر بتا رہی ہے کہ تھی.
ایسے
تو آثار جو نبویاں ہیں, مطلب بار بار کہاں آنا ہوتا ہے, یہاں تو نہ جانے کتنی جگہوں پر آپ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ تو چند وہ باتیں بیان کی ہم نے کہ جہاں اخبار و آثار کے ذریعے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ کی نشانیاں موجود ہیں.
سبحان اللہ. مزید اس کی معلومات کے لیے عاشقان رسول کی 130 حکایات ہے, اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے,
اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. رفیق الحرمین میں بھی لسٹ لگی ہوئی ہے
جی,
یہاں بھی کچھ جگہوں پر کی نشاندہی کی گئی ہے.
صحیح. مرحبا. سر اب یہ فرمائیں کہ بعض وقت جو حاجی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو رہائش ہے یہ حدود حرم سے باہر ہوتی ہے, تو جو حدود حرم سے باہر ہے اور اس نے حج کا احرام باندھنا ہے تو وہ حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟
ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے, حاجی کی رہائش حدود حرم کے اندر ہی ہوتی ہے.
ٹھیک.
میں نے دیکھا آج تک کہ جو اس پر گئے ہیں حج اسکیم میں گئے ہیں ان کی جو رہائش ہے وہ اس سے باہر ہو.
ٹھیک.
کیونکہ مکی ہونا تو اس میں ہے نا, منصب میں شامل ہے کہ وہ مکی ہوگا آ کے, تو اور گورنمنٹ کے بھی جو انتظامات ہیں اس کے تحت جو بلڈنگیں اور ہوٹل ہیں وہ اس سے باہر نہیں ہیں.
ٹھیک.
عزیزیہ کا علاقہ بھی حرم میں ہے, یہاں تک کہ مزدلفہ کا علاقہ بھی حرم میں ہے.
صحیح.
یعنی آج کل ہمارے کچھ جاننے والے ہیں وہ ایک ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں, میں بھی جانا ہوا تھا میرا, تو اس میں میں نے قیام کیا تھا, تھوڑا سستا ہے وہ, بہت سستا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل مزدلفہ کے سامنے ہو, مطلب اور مزدلفہ حرم میں ہے, یہ ہوٹل بھی حرم میں ہے, تو یوں حرم بہت بڑا ایریا ہے. اچھا, میں دو مسئلوں پر تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا.
جی.
پچھلے ہفتے یعنی پچھلا جو پروگرام تھا اس میں میں ڈسکس کیا, ایک کی تو وضاحت ہے اور ایک کا ازالہ ہے. وضاحت پہلے مسئلے کی یہ ہے کہ وہ جو خوشبو والا مسئلہ بیان ہوا تھا,
جی,
بھائی بیلٹ میں خوشبو رکھ سکتے ہیں یا نہیں, اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خوشبو نہیں رکھ سکتے اور یہ آنچل والا جو مسئلہ ہے اس کے حکم میں ہے. مسئلہ تو ٹھیک ہے, سوال کے مطابق ہے, سوال میں خوشبو کا ذکر کیا, جواب میں جو حکم تھا وہ بیان کیا, لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیپ میں اگر ہم جائیں گے تو خوشبو دو طرح کی ہوتی ہے. جیسے ایک کستوری آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی نے رکھ لی اور تھیلی میں پیک بھی نہیں ہے, تو اس کے رکھنے کا مقصد ہے خوشبو مہکتی رہے. تو چونکہ احرام میں آنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہوتا ہے, قصدن خوشبو یہ سونگے گا بھی نہیں, یعنی کسی طرح والے کے دکان کے پاس چلا جائے اور پتا چلا کہ وہاں خوشبو آ رہی ہے, تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں, تو وہاں بڑے خوشبو کے جو نا وہ لشکارے اٹھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات طواف میں لوگ دھنی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور دکانوں کے پاس سے گزرے انہوں نے لگائی ہوتی ہے. جو لوگ 5-star ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں وہاں تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہوا میں خوشبو مسلسل ملائی جا رہی ہوتی ہے.
صحیح.
اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس سے خوشبو جو نا وہ ہوا میں مسلسل شامل ہو رہی ہوتی ہے اور ایک فضا میں ایک معطر فضا ہوتی ہے وہاں پر. اب کوئی گزر رہا ہے تو اس کی نیت پر ہے, خوشبو سے لذت محسوس کرتا ہے تو ممنوع ہے, اور مجبوری سمجھ کے گزر رہا ہے, ناپسندیدگی سمجھ کے کہ میں فائدہ نہیں اٹھا رہا خوشبو سے بس جلدی سے گزر جاؤں, تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے.
ٹھیک.
تو ایک تو خوشبو وہ ہے کہ جس کا مقصد ہوتا ہے خوشبو کا پھیلنا, اور خوشبو پھیلتی بھی ہے, تو اس طرح کی خوشبوئیں ذکر کرنے کے بعد فقہ نے لکھا کہ ایسی خوشبو آنچل میں باندھنا منع ہے حالت احرام میں. آنچل کا جو متبادل لفظ ہے وہ پلو ہے, پلو میں باندھنا. لیکن اگر خوشبو ایسی ہے کہ جس سے خوشبو پھیلتی نہیں ہے, جیسے اود کی لکڑی جو ہے جب تک جلے گی نہیں خوشبو نہیں دے گی, تو اگر کسی نے اود کی لکڑی باندھ لی ہے تو اس کا فقہ نے منع نہیں لکھا. سندر کی لکڑی کا بھی حکم لکھا ہے, تو اود جو ہے یا تو اس کی جو خوشبو کشید کی جاتی ہے, اور زیادہ تر جو ہے عرب میں اس کو جلا کر اس کا جو دھواں جب اٹھتا ہے تو اس کی پھر خوشبو اڑتی ہے. اود کی بھی قسمیں ہیں, جو یمنی اود ہے اس کی وہ خوشبو نہیں ہے جو ہم حرم میں دیکھتے ہیں. یمنی اود کی الگ ہی تھوڑی سی بہت خوشبو ہے, تھوڑی عجیب سی ہے, مجھے تو خیر کوئی ایسی نہیں لگی, لیکن جو خوشبو حرم میں اہل حرم نے لگائی ہوتی ہے, گھروں میں دھنیاں دے رہے ہوتے ہیں یا مسجد الحرام شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کی اپنی خوشبو ہے، اور وہ لکڑی سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے.
اللہ اکبر،
سونے کا جو وزن ہوتا ہے نا
جی،
اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اتنی قیمتی لکڑی ہوتی ہے.
صحیح.
اور یہ لکڑی زیادہ تر ہوتی ہے اودے ہندی جو ہے مشہور ہے.
صحیح. اودے
ہندی کے نام پہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں.
صحیح.
خود خطہ عرب میں بھی لکھی گئی، خطہ ہند میں بھی لکھی گئی.
واہ.
تو ایک خوشبو والے جو ملے، کا جدی پشتی گام تھا، ہند سے تھے، کسی عرب ملک میں ملے تھے مجھے. میں نے پوچھا کہاں ہوتی ہے لکڑی، کہیں گے کہ ہند کے وہ ایریاز جہاں مسلسل بارش ہوتی ہے، جیسے آسام وغیرہ، یہاں سے شروع ہو کے ملائیشیا تک، کیونکہ یہ وہ پٹی ہے جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے. یہاں کچھ درخت پائے جاتے ہیں جن کے تنوں میں یہ لکڑی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس تنے میں ہے. پھر وہ آگ لگاتے ہیں، جب آگ لگتی ہے تو پھر جب خوشبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عود موجود ہے یہاں پر.
اللہ اکبر.
تو بات تھی لکڑی کی، اب تقسیم ہو گئی. اب ہمارے ہاں جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے بوتلوں میں.
جی جی.
تو بوتل کی جو خوشبو ہے اگر بند ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی خوشبو آئے گی.
نہیں.
تو یا بعض بوتلیں لیک ہو جائیں تو ایک الگ حکم ہے. تو اگر خوشبو ایسی ہے کہ وہ اس سے نکل رہی ہے، پھیل رہی ہے، تو ممانعت ہوگی.
ٹھیک.
اور اگر خوشبو ایسی ہے کہ جو بالکل پیک ہے یا ڈبے میں پیک ہے اور وہ باہر نہیں آ رہی خوشبو، تو یہ ہے کہ اس کو اگر کسی نے رکھا ہے تو ممانعت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ رفیق الحرمین میں جو بیگ لٹکایا اور اس میں خوشبو رکھی، اس میں جو اجازت دی گئی ہے، اس کا یہی پس منظر ہے. تو یہ تو وضاحت تھی پہلے مسئلے کی. دوسرا ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا پچھلے پروگرام میں، تو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی نے حلق کر لیا، اب بال بالکل نہیں ہے، صبح عمرہ کیا، شام کو دوبارہ کرنے لگا ہے، بال بالکل نہیں ہے، لیکن اب بھی اس طرح پھیرنا واجب ہے. وہ ہدایہ میں لکھا ہوا اجراء موسیٰ. ٹھیک ہے. تو وہ عربی میں اس طرح کو بھی بولتے ہیں. تو اس موقع پر تو واجب ہے، لیکن جب تعذر ہو گیا کہ اس کے سر پر پھوڑے ہیں، اس کے سر پر جو ہے نا وہ زخم ہے، اور اب اس طرح نہیں پھیر سکتا، اب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کر لے، حالت احرام سے باہر ہو جائے، اس موقع پر اس طرح قائم مقام پھیرنا بھی واجب نہیں ہے.
نہیں،
ہم نے اس کا برعکس بیان کیا تھا.
کال لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی،
محمد صدیق، قاہر آباد، کراچی سے. حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے حج پر وائف کے ساتھ، وائف بھی ساتھ ہیں میرے، تو ان کی کمر میں موروں کی تھوڑی سی پرابلم ہے. تو یہ جو سات چکر ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے، اس میں اگر وہ دو چکر یا تین چکر لگا کر کے کچھ 10 منٹ ریسٹ کر لیں، تو اس طریقے سے پاسبل ہوتا ہے؟ سات چکر پورے تو کریں گے وہ؟ یہ ذرا کائنڈلی ذرا تھوڑا سا
دیکھیے. جہاں جتنی مجبوری ہے اتنی رخصت بھی ملتی ہے. اگر یہ خاتون جو ہے وہ تھوڑا ٹھہر کے وقفہ لے کے پھر کنٹینیو کرتی ہیں تو بالکل ممکن ہے ایسا، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں کہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں، یہ نہ ہو کہ ایریا رہ جائے. ایک قدم پیچھے سے شروع کر دیں گی تو اچھا ہے، لیکن ایریا رہنا نہیں چاہیے. اور بڑی ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ، ورنہ تو ایسے موقع پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں تو آپ. جب مجبوری نہیں ہے اور بندہ، جیسا نماز کا مسئلہ ہے، کوئی عصا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ عصا لے کر کھڑا ہوگا.
ٹھیک.
دیوار کے سارے کھڑا ہو سکتا ہے تو دیوار کے سارے کھڑا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جناب ہر شخص بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا. تو یوں جتنی مجبوری ہے اتنی ہی رخصت ملتی ہے.
نہیں. ٹھیک ہے. کال.
میرا سوال یہ ہے، حج شریف کا جب احرام 7 یا 8 ذی الحج کو اپنے ہوٹل سے مکہ المکرمہ سے باندھا جائے گا، تو اس کے بعد طواف کرنا لازمی ہے یا وہ ادھر سے احرام باندھ کے منا میں چلا جائے؟ ایک بات. دوسرا، جو حج کی صحیح ہے، اب احرام 8 ذی الحج کو باندھ کر طواف کرنے کے بعد ہی صحیح ساتھ کر لی جائے یا واپسی پہ کر لی جائے؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا.
دیکھیے، حج تمتع کرنے والا احرام جب حج کا باندھے گا، 8 تاریخ کو باندھنا ہوتا ہے، لیکن اگر رات کو گاڑیاں روانہ ہو رہی ہیں تو رات کو آپ کو جانا ہوگا، تو حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہے. اور اس احرام باندھنے کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ آئیں آپ पहले तो आपने हज के हराम में आना है, उसके बाद आप मस्जिदुल हराम शरीफ आए, वहाँ आपने एक नफली तवाफ़ किया और इस तवाफ़ करने के बाद आपने सही कर ली, तो जो हज की सही है वो अदा हो जाएगी। इस तवाफ में आप रमल भी करेंगे और इस्तेबा भी करेंगे। फुका ने लिखा और इस मसले को तफसील के साथ हमने 27 वाजिबात में भी बयान किया है कि हज किरान करने वाले के लिए अफजल ये है कि वो हज की सही हज से पहले करें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने भी हज किरान फरमाया और आप अलैहिस्सलाम ने हज की सही हज से पहले अदा फरमाई। जो हज तमत्तु करने वाला है इसके लिए हज की सही करना हज के बाद अफजल है। अच्छा, आज के दौर में अगर देखा जाए तो 7 तारीख को 8 तारीख को मस्जिदुल हराम शरीफ कचाकच भरा हुआ है, पांव रखने की जगह नहीं है। अब आपकी रिहाइश अजीजियाँ में आपने हज की नीयत करनी है अहराम की, आप पहले आए मस्जिदुल हराम शरीफ में, नीयत कर ली, फिर आपने तवाफ़ किया इतने रश में, फिर आपने इतने रश में सही की, उसके बाद आप दोबारा अपने होटल गए, वहाँ से फिर आप मुल्लिम की गाड़ियों के ज़रिए रवाना हुए मीना की जानिब, तो इस सब के अंदर बहुत तकलीफ़दह मामला है, मशक्क़त है। और अफजल भी यह है तमत्तो वाले के लिए कि वह बाद में करे, तो यूँ हज की सही अगर आप बाद में करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाद में जब तवाफ़ ज़्यारत आपका अदा हो जाएगा, तवाफ़ ज़्यारत के बाद करनी होगी। तवाफ़ ज़्यारत के बाद, तवाफ़ ज़्यारत के लिए ज़रूरी नहीं है कि अहराम खुल चुका हो, अफजल ये है कि अहराम खुल चुका हो। अब आपका अहराम खुल चुका होगा, सादे कपड़ों में आप होंगे, अब आपने तवाफ़ किया और इस तवाफ़ के बाद आप हज की सही अदा करेंगे, ये वो हज की सही होगी जो सादा कपड़ों में होगी और अहराम की हालत में आप नहीं होंगे।
अच्छा मुफ्ती साहब, ऐसा भी है जैसे लोग जो आपने इन्होंने सवाल भी किया और आपने फरमाया कि मस्जिदुल हराम आएंगे, जो हमारी मालूमात है 4 या 5 तारीख से अजीजिया वालों के लिए गाड़ी भी बंद हो जाती है, तो उनका मस्जिदुल हराम आना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है ना?
सही फरमा रहे हैं हम, गाड़ी बंद हो जाती है और जो मिसला वगैरह में भी है वहाँ भी दूर दूर तक जो है ना वो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, पैदल चलना दुश्वारी बहुत है इसमें।
दूसरा, जैसे नियत की बात चल रही है और सलमान भाई ने इब्तिदा में आपसे सवाल भी किया था और ऐसे सवालात मतलब कुछ आते भी हैं कि जैसे कि जो हज पर गए हैं वो तो अहराम, जैसे आपने फरमाया हरम में है, हरम से ही बांधेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जद्दा से आकर हज करना चाहते हैं, इसी तरह हिल में रहते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, तो वो अगर हज के लिए आना चाहते हैं तो उनको भी गाइड कर दें कि वो अपनी नियत कहाँ से करेंगे।
देखिए, 27 वाजिबात में जो पहला वाजिब है वो है मिकात, कि किसको हज का अहराम कहाँ से बांधना है, डिटेल के साथ उसी पर बातचीत की गई है और ज़िमनन उम्र पर भी बात की गई है। तो हज का जो अहराम है, अगर कोई जद्दा का रहने वाला है और वो मक्का मुकरमा आ रहा है हज करने के लिए, तो वो हुदूद हरम शुरू होने से पहले पहले हज की नियत करेगा, ये उसके लिए ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स जो है वो मक्का मुकरमा में है यानी हुदूद हरम में है, जैसा कि हाजियों की गालिब जो तादाद है वो हज से पहले हुदूद हरम में मौजूद होती है, कुछ होते हैं जो मदीना मुनव्वरा में होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे होते हैं, तो ये लोग हो गए मक्की और हरमी यानी अहले हरम हो गए, तो इनके लिए जो हज का अहराम है वो हरम से ही बांधना होगा। बाज़ लोग इस मौके पर सवाल पूछते हैं, हम तो अज़ीज़िया में रहते हैं, अज़ीज़िया भी हुदूद हरम के अंदर है, तो अहराम जो है इन्हें हुदूद हरम में बांधना है। उमरे का मामला अलग है, उमरे का अहराम मानने के लिए हुदूद हरम से बाहर जाना होता है अहले मक्का को, और वो हरम के बाहर जाकर उमरे का अहराम मानकर आते हैं, लेकिन हज का अहराम इसका हुक्म मुख्तलिफ है, इसका अहराम हुदूद हरम में रहने वाले वहीं से बांधेंगे।
यानी सर ये कहा जा सकता है कि ये अपने होटल से ही अहराम बांध के नियत कर ले,
बिल्कुल
उतर रहा है तो
बिल्कुल की जाए।
ठीक है, ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, नियत कैसे करेंगे हज की?
देखिए, जो चीज़ें बयान की पहले से, यानी जब ये घर से रवाना हुआ है और उसने सुना कि जी मैं अहराम मैंने पहनना है, अहराम से पहले गुस्ल करना है और अहराम से पहले मैं खुशबू भी लगा सकता हूँ, बल्कि बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत से साबित है, तो अहराम की चादरों पर भी खुशबू लगाई जा सकती है नियत करने से पहले, तो ये अच्छी तरह एक एहतमाम करे, गुसल का एहतमाम करे, गुसल करे, जो मुँह ज़र नाफ वगैरह हैं उसको भी साफ़ कर ले और एक खुद को तैयार करे, फिर जो है चादरें पहने ताकि जब नियत करे ये तो ये ना हो किसी लिबास में ना हुआ हो, बगैर सिली चादरें दो चादरें जो होती हैं वो पहन ले, और उसके बाद मकरू वक्त नहीं है तो दो रकात नमाज नफिल पढ़े जो कि अहराम के नफिल कहलाते हैं। इसके लिए मस्जिद में जाना या कहीं और जाना ज़रूरी नहीं है, अपने होटल में है तो वहाँ भी पढ़ सकता है। उसके बाद हज के अहराम की नियत करे, जिसका खुलासा ये होगा ए अल्लाह मैंने तेरे लिए हज का अहराम बांधा। अब ये अल्फाज जो हैं वो किताबों में अरबी में भी मौजूद हैं, वो अल्फाज पढ़ते हुए नियत दिल के अंदर ताज़ा करते हुए ये नियत करेगा। वाज़ह रहे कि बात हो रही है उन लोगों की जो मीकात के बाहर से गए उमरा कर चुके हैं और अब हज का अहराम बांध रहे हैं, जो मक्का मुकरमा का रहने वाले हैं वो चूंकि हज इफराद करते हैं तो वो भी हज का अहराम बांधेंगे। इसके बरखिलाफ जो कारिन है वो ऑलरेडी अहराम में मौजूद है, उसने मीकात से पहले ही हज और उमरे की नियत कर ली थी, लिहाजा वो तो पहले से अहराम में है, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बस मीना की तरफ रवाना होगा।
सर अब ये अहराम की नियत करने के बाद दुआ भी करेंगे?
जी हाँ,
अहराम की नियत कर ली, लबैक पढ़ लिया, आप
नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ मांगेगा। और नियत के हवाले से हम पहले बयान कर चुके हैं कि जब भी नियत की बात आती है वो नियत उम्रे की हो या हज की हो तलबिया पढ़ना ज़रूरी है। अगर तलबिया नहीं पढ़ेंगे या कायम मकाम तलबिया के समझते हुए जिक्रुल्ला नहीं करेंगे तो अहराम शुरू ही नहीं होगा। तो दुआ भी करें और तलबिया पढ़ना है और फिर दुआ करनी है।
अमीर सुन्नत ने इस मौके पर लिखा है, फरमाते हैं
तूने मुझको हज से Yeah.
यहाँ एक मशवरा भी मैं अर्ज करूँ कि अगर तो आपके साथ बूढ़े नहीं है और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो माजूर हो और हो सके आपसे, तो आप 8 तारीख को आ जाएं मस्जिदुल हराम शरीफ, खेमे वगैरह का एड्रेस ले लें अच्छी तरह कि हमारा खेमा कहाँ है, क्योंकि जो मीना की बस्ती है उसको मुख्तलिफ एरियाज में तकसीम किया गया है, नक्शे भी मिल जाते हैं उसके, नेट से डाउनलोड हो जाते हैं, जो वजारत हज है उसकी वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो नक्शे आपने ले लिए और आपने देख लिया कि कौन से ब्लाक में होगा हमारा एरिया, तो वहाँ दो तो बड़ी मशहूर निशानियाँ हैं, दो पुल हैं बड़े, तो एक पुल जो है वो जमरात के साथ है, पुल
कुबरी खालिद
खालिद नाम है उसका, खालिद कुबरी कहते हैं वहाँ पुल को, और दूसरा जो है वो कुबरी फैसल है, इन दोनों के दरमियान मीना का बड़ा हिस्सा है, इन दोनों पुलों के दरमियान दूर दूर है, मतलब पुल समझा दिए कि वो रोड है, तो बड़ा हिस्सा है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि मेरा जो है ना वो कहाँ होगा एरिया, और ठंडे टाइम में आ जाए, फजर पढ़ के मस्जिदुल हराम शरीफ से मौलवी शरीफ की तरफ निकले, अल्लाह अकबर जो मंजर इसे मिलेगा देखने को, अभी शेर पढ़ा इन्होंने कि लबैक की सदाएं, और फिर जनाब अपने ही काफिले के लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, सबका एक ही लिबास है, कोई अलामत तो है ही नहीं अलग, भी पंदा कहाँ गया कहाँ गया, सारे के सारे जो है वो एहराम में है, सफेद एहराम में, और फिर वलवला जो एक माहौल मिलता है ना पैदल जाने में, यहाँ से जनाब शामी काफिला गुजर रहा है नौजवानों का, और वो लबैक पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी देर में देखेंगे मिस्री गुजर रहे हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जनाब वो लबनानी गुजर रहे हैं, यमनी गुजर रहे हैं, तो हर एक का वलवला, हर एक की मोहब्बत शौक, और एक एक कदम पर लाखों लाख नेकियों का सवाब, और यूं आप शटर बनाया हुआ है, यानी ऊपर जो है ना वो साया है, अगर छज्जा है, अगर धूप भी होगी तो आप उसके नीचे चलते 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 जमरात तक आराम से पहुंच जाएंगे, तो जमरात के बाद भी जो है ना ये रास्ता चलता रहता है, और यूं आपको पैदल हज करने का जो है वो एक सवाब में आप हिस्सेदार हो जाएंगे, अगरचे के पैदल हज करने के दो मरले हैं, एक मरला तो ये है कि आप मीना जो है पैदल जाएं, दूसरा मरला ये है कि आप मीना से अरफात पैदल जाएं, तो दूसरा मरला बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन कुछ मुश्किल है, काफिला अगर साथ हो आपके और आप में हिम्मत हो और आपने वाक बड़ी अच्छी की हो तो मुमकिन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2010 में पैदल ही गए थे, दो हज किए मैंने, दूसरा 2013 में किया, तो चूंकि उसमें वालदा माजदा मेरे साथ थी, व्हील चेयर पे थी वो, तो उस वजह से पैदल का तो तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन जो पैदल हज में मजा है उसका अपना ही लुत्फ है।
क्या बात है, मरहबा।
खेमों का आपने फरमाया तो खेमे जो है ना नॉर्मली लोग जाते हैं 5 या 6 तारीख को जाकर अपने खेमे देख कर आ जाते हैं, तो वो उनको गाइड भी रहता है कि भाई ये खेमा मेरा कहाँ है, तो अब वो जब पैदल जाते हैं ना मस्जिद आराम से, जैसे आपने फरमाया कि फजर की नमाज आराम से पढ़कर फिर आए, यहीं से नियत करें और जाएं पैदल, तो माशाल्लाह अच्छा ज़ौक बन जाएगा।
सर वहाँ कशाफ भी होते हैं, कभी भूल जाए ना बंदा, तो वहाँ वो कशाफ होते हैं, वो बता देते हैं कि आप कहाँ जाना है, लेकिन कुछ मालूम आगत होगी तभी वो बता पाएंगे आप।
कशाफ मुझे याद आया वहाँ मुर्शिद भी होता है।
अल्लाह अल्लाह,
ठीक है
जी, वाह सही।
बस का कंडक्टर जो होता है ना
जी,
उसके पट्टी लगी होती है मुर्शिद,
मुर्शिद की, अल्लाह
ठीक है,
ठीक है।
तो वो मुर्शिद जो है वो कंडक्टर नहीं होता असल में,
सही।
होता यह है कि इस मौसम में हजारों गाड़ियां नहीं आती हैं,
सही।
इतने सारे गाड़ियां जो सिर्फ 5 दिन चलेंगी फिर बंद हो जाएंगी,
सही।
इतने सारे ड्राइवर कहाँ से आए, तो ड्राइवर आते हैं जो खलीजी ममालिक है उनसे ड्राइवर आते हैं, मिस्र से आ गए, यहाँ से आ गए, वहां से आ गए,
ठीक।
उन ड्राइवरों को रास्ता नहीं पता होता,
सही।
तो उनके साथ फिर इस तरह का कंडक्टर टाइप एक आदमी गाड़ी में रखा जाता है, तो उसका नाम होता है, उसका टाइटल होता है मुर्शिद, यानी राह दिखाने वाला,
वाह जी वाह,
ठीक है। तो वो जो है ना फिर ड्राइवर को गाइड करता है, तुम यहाँ से मुड़ो, यहाँ से मुड़ो, यहाँ से चलो, तो कशाफ के अलावा मुर्शिद भी होता है,
मुर्शिद भी होता है। चलिए ये भी हो गया सर, जो हज की 16 मसरूफियात आज हमने जो बतानी है उसकी मुझे बता रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन वगैरह उसकी
जी जी
रेडी है, उसकी तरफ भी आएंगे, कॉल एक शामिल कर लें
जी।
जी
हज तमत्तो के इरादे से अगर हम पाकिस्तान से मक्का शरीफ जाते हैं तो एक उम्रा अगर हमने कर लिया, इहराम खोल दिया, उसके बाद कुछ दिन अगर बाकी हैं तो दीगर उम्रे कर सकते हैं या नहीं? अगर कर लिया तो क्या हुक्म है?
जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुवानत नहीं है।
सर मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, आप जो है इससे हैरान होंगे। ये मजलिस हज उम्रा के साथ हज तरबीती सेशन था, तो वहाँ पर एक हाजी ने कहा कि अगर मीना में मेरा वुजू जो है वो अगर नहीं रहता तो अब मैं क्या करूँगा। तो उनको जो है वो बताया कि भाई आप दोबारा वुजू जो है वो कर लें। तो यानी आप देखिए, जब पूछने पर आते हैं तो यहाँ यहाँ तक भी लोग जो है वो पूछ ही देते हैं, मालूम दे देते हैं, और जब नहीं पूछने पर आते तो फिर
शायद उनका ये जहन था कि मीना में बगैर वुजू के नहीं रह सकते।
मुमकिन
ये भी गलत फहमी दूर करनी चाहिए कि बगैर वुजू के मीना में ठहरना जायज है। हाँ, अगर आप चाहते हैं बावजू रहूँ तो वजू का एहतमाम तो वहाँ होता है, थोड़े थोड़े फासले पर जो है वो खेमों के अंदर वजू खाने वाशरूम वगैरह बने होते हैं।
ठीक है जी, 16 मसरूफियात जो ये हज के 5 दिनों में होंगी उनकी डिटेल
सवाल करते जाएं हम।
ठीक है,
साथ साथ चलते
जी, जी ठीक है। यहाँ सर ये मेरे पास एक सवाल है, इनका कहना है कि जिनके खेमे मुजदलिफा में हों उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो 8 का दिन कैसे गुजारेंगे? गर्मी भी होती है, ये भी मलहूज़े खाते रखकर जवाब दिया जाए।
देखिए मीना में 2 कयाम होते हैं, एक होता है मीना में पहला कयाम। मीना का जो पहला कयाम है उसमें 5 नमाजें मीना में पढ़नी होती हैं, जहर असर मगरिब इशा और फजर, अगले दिन की फजर नौजुलिज्जा की। तो आजकल तो वैसे रात को ले जाते हैं, फजर नहीं पढ़ पाते, तो वो हमारे काफले में एक खातून थी, कहने लगी मैं तो नहीं जाऊंगी, रफीकुल आलम में लिखा हुआ है अगले दिन जाना है। बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि भाई जाना पड़ेगा, आप अकेले कैसे रहोगी, कैसे जाओगी। तो ऐसे मसाइल के अंदर कंप्रोमाइज करना जरूरी है, क्योंकि सुन्नत मौकदा कयाम है, सादतों का सामान है और बिला शुबा बेशुमार बरकात है इसके अंदर, जितना वक्त मिले उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर 2-3 हज़ार गाड़ियाँ चल रही हैं और वो 2-3 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं वो रिप्लेस ना करें, यानी कुछ मुसाफिरों को छोड़ के दोबारा ना आए, तो फिर तो लाखों गाड़ियाँ चाहेंगी, हज़ारों गाड़ियाँ चाहिए होंगी, उसके रोड भी नहीं इतने। तो यूँ इंतज़ामी तौर पर ये एक मुश्किल है कि हाजी पहले ही रवाना होते हैं, पहले रवाना होते हैं तो पहले उनको जाना पड़ेगा। अब बात ये जिसका खेमा ही मुजदलिफा में है, पहली बात तो यह है कि भाई खेमा आपकी रजामंदी की वजह से आया है, बगैर रजामंदी क्या है? इसे सरकारी स्कीम वाले हैं, सरकारी स्कीम वालों की कोई चॉइस नहीं होती।
ठीक
है जनाब, इनको कौन सा खेमा मिलेगा पता ही नहीं होता। लेकिन अब्दुल्ला भाई बता रहे थे कि बड़े मजे में उनको, तो जनाब बड़े नजदीक नजदीक खेमे उनको मिले हैं।
इस मरतबा तो माशाल्लाह अक्सरियत जो अब तक की मालूम है सारे खेमे इनके मीना के अंदर,
माशाल्लाह
अब तक की मालूम आती है
सरकारी हज स्कीम वालों,
सरकारी हज स्कीम वालों के।
अच्छा, अब प्राइवेट वालों के पास पहले से पता होता है, वो कहते हैं कि भाई डी कैटेगरी में लोगे तो इतने पैसे लेंगे हम, और इसके अलावा इस कैटेगरी में लोगे तो इतने लेंगे। पहले तो ये होता था कि 50,000 का डिफरेंस होता था, अब चूंकि कहाँ 40 रुपये का रियाल और कहाँ 80 रुपये से भी ज़्यादा, तो उस वजह से अब ये फ़र्क जो है वो 1.5 लाख 2 लाख तक का आ गया है। तो 1.5-2 लाख रुपये का फ़र्क पैकेज में आ जाता है जिसकी इस्तेआत है कि नहीं मैंने सुन्नत मौकदा अमल करना है और मैं 2 लाख रुपए ज़्यादा दे के भी पैकेज वो लूँ कि मीना में मेरा खेमा हो तो वह मीना में ले। जिसकी इस्तेआत इतनी नहीं है और वो अगर मुजलिफा में ही आया है तो फिर वो कंप्रोमाइज़ करेगा। अगर उसके अंदर गुदगुदाहट होती है कि नहीं मैं मीना में चला जाऊँ वहाँ वक्त गुजार लूँ, गुजार सकता तो गुजार लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये बताते हैं आपको कि है बड़ा मुश्किल।
ठीक,
आज आप एक दिन गुजारेंगे, फिर जब बाद में आप आएंगे तो बाद में रातें गुजारना मीना में सुन्नत मौकदा है। अगर आपके साथ फैमिली है आप क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ कोई सर रोड पर बैठा हुआ उसको बैठने में नहीं देते,
ऐसा ही
क्योंकि रश हो जाता है और फिर
अगर थक जाए तो भी वो कहते हैं कि आप चलते रहे, ये भी है।
अगर कोई मौका मिलता है आपको, बिल्कुल ही मीना के संगम पर आपका खेमा है, यहाँ एक कदम रखो तो मुजलिफा और यहाँ मीना है, तो फिर भी समझ में आता है कि आप यहाँ के ठहर जाएंगे। लेकिन अगर बहुत दूर एरिया है और समझ नहीं आ रही कहाँ है,
नहीं।
फिर अपने जो वो है इत्मीनान और अपनी जो राहत है उसको भी फोकियत देनी है आपने। ये ना हो कि आप तशवीश का शिकार होके तवज्जो इल्लाह भूल जाएं और जो असल मकसद है वहाँ से आपका दिल फिर जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप एक चीज़ के लिए परेशान तो हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट करना होता है, फेस करना होता है। परेशान ही रहेंगे तो बाकी के मामला परेशान हो जाएंगे।
सही सवाल है जी, मीना में नमाज कसर पढ़ेंगे या पूरी पढ़ेंगे?
देखिए देखा ये जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है हाजी का। जैसे आजकल जो पहुंचा है हाजी मक्का मुकरमा में और मदीना शरीफ भी नहीं जाना उसको, तो ये तो मुकीम हो गया।
ठीक,
तो जो हाजी मीना जाने से पहले मुकीम है वो मीना में भी मुकीम होगा, जब मुकीम है तो पूरी नमाजें पढ़ेगा।
ठीक,
जो हाजी मुसाफिर होगा तो वो कसर करेगा।
ठीक है, मीना में मेट्रो ट्रेन भी चलती नजर आती है, बाज़ औक़ात हाजियों का जी ये भी चाहता है कुछ कहा के चलो इसमें बैठकर एक जो है वो घूम लेते हैं सारा, इसको देख के आ जाते हैं, इस बारे में आपका क्या स्टांस है?
अरे फ्री की ट्रेन चल रही होती है
जी, ऐसा
ऐसे नहीं होता, वो उसका बाकायदा हाथ का बेल्ट मिलता है और जिनके खेमे स्टेशन के करीब होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, तो जिनके पास वो बेल्ट होगा वही उस ट्रेन में जा सकेंगे।
तो उसका क्या कोई तरीका है? मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ।
उसका तरीकेकार ये, जैसे पिछले साल सलमान मदनी भी थे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो ट्रेन का टिकट मिल गया था, तो अब वो उसकी जो औकात हैं कि भाई आपने जाना है, तो हमारे काफिले वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह 9 ज़िलहिज्जा को सुबह जब अराफात जाना था तो उसी ट्रेन के जरिए से हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह निकले थे नाश्ता करके, तो वो ट्रेन स्टेशन सामने ही था, वहाँ ट्रेन पर गए, अपना बेल्ट दिखाया, उन्होंने ट्रेन पर बैठने दिया, उस ट्रेन ने हमें सीधा उतारा वहाँ पर अराफात में, हमारा स्टेशन नंबर 3 था, तो वह 3 नंबर पर उतारा, वहीं से थोड़ा सा वॉक के लिए हमारे साथ वो जो आपने कहा ना मुर्शिद, तो वो थे आगे आगे, तो वो हमें लेकर हमारे खेमे तक लेकर गए वहाँ करीब में। तो ये सिर्फ उनको मिलता है जिनके खेमे स्टेशन से करीब होते हैं।
हमारे मुर्शिद ने तो हमें फंसवा दिया था। ऐसा फंसवा दिया था, उसने ड्राइवर को गाइड किया और वो मतलब हम अराफात से आ रहे थे और ये जगह जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अच्छा, उस ड्राइवर के लिए मेरे आज तक मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। मैंने कहा शेख ये कहाँ रोक दी अपनी गाड़ी, ये तो जंगल है बिल्कुल, ना मुजलफा है ना मीना है, ठीक है मुजलफा जाना है हमने। अच्छा हैराम बांधा हुआ था उसने भी अराफात से वापसी पर। अच्छा वहाँ अगर हम उतर जाते हैं तो फंस जाते हैं। उसने कहा ठीक है आप जहाँ मुझे बोलेंगे मैं उतारूंगा। ले आया बेचारा ला के बिल्कुल उसने मुजलिफा में हमें उतारा। अच्छा हम लोग उतर गए तो क़याम किया, रात गुजरी, तो हमने रात को प्लानिंग की कि जब हमें मीना जाना होगा तो हम करेंगे क्या। मैं बहुत ज़्यादा परेशान यूँ था कि वालदा मेरी मेरे साथ हैं, उनको व्हीलचेयर पे मैं लेके जाऊंगा। सबसे टफ टाइम यही होता है जब आप मुजलिफा से मीना जा रहे होते हैं तो घमसान मची होती है
ऐसा ही,
और इतने रश में व्हीलचेयर कैसे चलेगी ये सब चीज़ें। तो अभी हम सोच रहे थे कि हम चलें आगे, काफिला बल्कि चलना भी शुरू हो गया, 2 गाड़ियां थी हमारे काफिले की, तो दूसरी गाड़ी वाले से फ़ोन आया मुझे, कहेंगे आप लोग कहाँ हैं? हमने कहा हम तो यहाँ हैं। कहेंगे भाई वो ड्राइवर बुलवा रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने सुना नहीं था कि ड्राइवर जो है वो आपको रमी पर भी छोड़कर आएगा। आमतौर पर ड्राइवर जो है वो मुजलफा तक लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं, फिर आप मुजलफा से खुद ही मीना जाते हैं, रमी करनी तो रमी करने के लिए जाते हैं। अब्दुल्ला भाई उसने हमें गाड़ी में बिठाया, ठीक है वही ड्राइवर, और जाके हमें कुबरी खालिद पर छोड़ा। ठीक है, वहाँ से जब मंजर देखा हमारे लोगों ने, मतलब छोड़ा तो मुश्किल से 8 बजे होंगे, हमारे कुछ लोगों ने मंजर देखा इतना रश, कुछ तो वापस हो गए, नहीं भी हम तो इस वक्त रमी नहीं कर सकते, ठीक है हम शाम में कर लेंगे। तो बाकियों ने हमने कहा कि 2 गाड़ियों के लोग हैं तकरीबन 100 अफराद बन जाते हैं, एक साथ काफिला चलेगा तो रास्ता बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूर से देखने को तो रश बहुत लग रहा था लेकिन जब आगे बढ़े और चले तो रास्ता मिलता गया और बहुत आसान तरीके से एक मुश्किल वक्त जो है वो गुजर गया। तो यूं वो मुर्शिद साहब हमारे गाड़ी के जो है उसने तो हमें एक घाटी से बिल्कुल वहां जाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन ड्राइवर ने बहुत साथ दिया, उसने कोऑपरेट किया, तो मामला अच्छे हो गए।
ठीक है, यहाँ जो ट्रेन में बैठ के घूमने वाला उस पर फिर क्या कहते हैं आप, घूम ले बंदा बैठ के, अगर तो टैग लगता है वो निकालना होता है।
मसला ये है कि घूमने तो नहीं आया ना यहाँ पे, ठीक है, कोई मकसद, पहली बात तो ये कोई मकसद हो तो घूमना बनता है। जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि जी आप 5 तारीख को देख कर आ जाए, तो जाहिर बात आपने पैसे खर्च किए, अपने टैक्सी पकड़ी, आप जाकर देख कर आए हैं। ये जगह है अमानत, मतलब ये जायरीन को लेकर जा रही है, लेके आ रही है। अगर हर बंदा इसमें घूमना शुरू कर दे तो जिनका हक है उनका हक मुतासर होता है, तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए।
मदीना मदीना, ये बताइए अरफात में कब जाना है और कब से कब तक रहना है?
अरफात हम खड़े थे पहले मसूफियत पर, जो अय्याम हज हैं, अय्याम हज जो हैं वो 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये अय्याम हज कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इस्तिलाह है, एक है हज के महीने, अशहुरे हज, शवाल, ज़िकादा, ज़िलहिज्जा के 10 दिन, ये हज के महीने हैं। अच्छा, जो अय्याम हज हैं ये 5 दिन हैं, 8 से लेकर 13 तक। तो 8 से लेकर 13 तक एक हाजी ने 16 मसरूफियात अंजाम देनी है। पहली मसरूफियत के मुताबिक हमने सुना कि मीना का पहला क्याम, मीना के पहले क्याम पर तफसील से गुफ्तगू भी हो चुकी है। अब है अरफात में जाना और अरफात का वकूफ। तो अरफात कब जाना है? वैसे तो यह है कि तुलुए आफ्ताब मीना में जब हो जाए उसके बाद फिर अरफात की तरफ रवाना हो।
ठीक,
पहले बात बयान हो चुकी है कि बहुत सारे हाजी वो होंगे कि जो रात को ही पहुंच जाएंगे, जिसका खेमा जहां है वो वहां जाके अरफात में पहुंचेगा, पहले पहुंच गया आराम करे। अरफात का जो वकूफ है ये हज का फर्ज आजम है। 3 फ़राइज हज के हैं, हम बयान कर चुके हैं, इन 3 फ़राइज में जो सबसे बड़ा फ़र्ज है वो अरफात का वकूफ है। अरफात का जो वकूफ है इसका वक्त शुरू होता है जहर की नमाज का वक्त जब शुरू होता है, 9 ज़िलहिज्जा को जहर की नमाज का जब वक्त शुरू होगा तो अरफात का वक्त शुरू हो जाएगा, और अगले दिन की फजर शुरू होने से पहले तक वकूफ का जो वक्त है वो बाकी रहेगा। लेकिन जो दिन में वकूफ के लिए आया है उसके लिए वाजिब है कि वो मगरिब तक इंतजार करे, गुरूब होने के बाद फिर वकूफ छोड़ेगा, रात का कुछ हिस्सा आ जाना ये वाजिब है। ये जो इस्तियाब और इम्तिदाद है समान भाई, ये वकूफ करने के बाद से लेकर मगरिब तक है।
ठीक है,
कोई मिसाल के तौर पर 4 बजे अरफात में आया उसके लिए भी हुक्म है, कोई 5 बजे आया उसके लिए भी हुक्म है, और कोई अगर 2 बजे आ गया उसके लिए यही हुक्म है,
और सुबह 10 बजे आया उसके लिए भी
10 बजे आया तो उसका वकूफ वही है तो जोर से शुरू हो गया।
ऐसा ही
तो ऐसा नहीं है कि जोहर के वक्त ही आना वाजिब है, बात वजूब की हो रही है। लेकिन जिस वक्त दिन में कोई आया अब वो मगरिब तक वकूफ करेगा, उससे पहले नहीं जा सकता। रात के वक्त अगर किसी ने वकूफ किया है, अगरचे दिन के वक्त वकूफ करना भी एक वाजिब है, ये नहीं कि बंदा रात को आ जाए कोई ऑप्शन उसके पास, ऐसा नहीं है, दिन के वक्त वकूफ करना भी एक वाजिब है। लेकिन रात के वक्त कोई अगर वकूफ करता है तो एक लम्हा भी अगर उसका हालत एहराम में, हज का एहराम और अरफात के मैदान में पाया गया, उसका वकूफ अदा हो जाएगा। वकूफ जो है पूरा का पूरा जो वक्त है, यानी जोहर का वक्त शुरू होने से लेकर मगरिब तक आपने यहाँ ठहरना है, तो इसकी पहले प्रिपरेशन करनी है कि आपने इस वक्त के अंदर इबादत करनी है। अपनी इबादत को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर लें,
बराबर,
मतलब अज़कार कुछ वक्त में कर लें, कुछ वक्त में कुरान पाक की तलावत कर लें, कुछ वक्त में दुरूद पाक पढ़ लें, और एक हिस्सा जो है वो दुआ के लिए छोड़ दें। चाहे तो हर अमल के बाद दुआ करना शुरू कर दें, आपने कुरान पाक पढ़ा फिर कुछ देर दुआ कर ली, आपने अस्कार पढ़े फिर कुछ देर दुआ कर ली, आपने जो है वो दुरूद पाक पढ़े फिर कुछ देर दुआ कर ली। तो आज का जो दिन है वो दुआ का दिन है और गिरिया का दिन है, क्योंकि इतने लंबे वक्त में मुसलसल दुआ करना मतलब कि एक बहुत मुश्किल काम है, उकताहट भी होती है। तो तरावट के लिए ये जरूरी है कि चीज़ों को तकसीम कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो आपने प्रिपरेशन करनी है, आप हवाइज तबैया जो हैं उनसे फारिग हो जाएं, वॉशरूम वगैरह से फारिग हो जाएं, गुस्ल कर लें, क्योंकि आज के दिन गुस्ल करना सुन्नत मौकदा किताबों में लिखा है। अब वहाँ बाकायदा गुस्ल खाने नहीं होते, कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन होता यह है कि WC वाले वॉशरूम होते हैं, और वो भी पब्लिक वाशरूम। पब्लिक वाशरूमों में किसी की हिम्मत अगर बनती है और वो दो चार लोटे बहा के और फिर वहीं नहा लेता है तो कोई अजूबा तो नहीं है, मुमकिन है, पॉसिबल है। तो गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद मैल नहीं छुड़ाएंगे क्योंकि आप हालत एहराम में हैं, बस पानी डालना है आपने। और जिस तरीके से जुम्मे का एक गुस्ल होता है कि जुम्मे की ताज़ीम के लिए होता है वो गुस्ल, असल जो मकसद है उसका वो जुम्मे की ताज़ीम है। इस गुस्ल का जो असल मकसद है वो है वकूफ़ की ताज़ीम। तो आपने एक इबादत का वक्त शुरू होने जा रहा है उसकी ताज़ीम के लिए गुस्ल करना है। अब जब वक्त शुरू हो गया अब आपने बातें नहीं करनी, अब आपने कलाम नहीं करना, आपने गिरिया करना है। धूप चूंकि सख्त होती है,
गिरिया करना सर क्या मतलब?
गिरिया का मतलब है अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, इल्तिजाएं करनी है, उसकी बारगाह से मांगना है। आज जो मांगोगे वो दिया जाएगा, आज वो दिन है कि सारे के सारे आकर यहाँ मौजूद हैं, आज के दिन सालेहीन भी हैं, आज के दिन वक्त के वो कुतुब अब्दाल भी पहुंचे हुए होंगे, रिजालुल गैब भी पहुंचे हुए होंगे। वो इज्तिमा है जहाँ पर आपका शुमार उन लोगों में है कि जिन जिस मजमे में सालेहीन भी हैं और आप भी हैं।
वाह वाह,
तो कितनी सारत की बात है। बल्कि रिवायतों में आता है कि दो अंबिया भी बदनफ़ से नफीस तशरीफ लाते हैं, हजरत खजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये भी मकाम अरफात में मौजूद होते हैं। वैसे तो किताबों में ये लिखा है कि जब कोई शख्स अरफात में जाता है तो कोशिश करे जबल रहमत जो है उसके पास उसे जगह मिल जाए। जबल रहमत वो मुबारक पहाड़ है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जहाँ वकूफ़ फरमाया था। पहले आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था, जहर और असर मिलाकर पढ़ाई थी, खुतबा दिया नमीरा के मकाम पर। नमीरा जिस जगह आज मस्जिद नमीरा है इसका कुछ हिस्सा अरफात से बाहर है। अगर कोई मस्जिद को फॉलो कर रहा है तो दुश्वारी का शिकार हो जाएगा कि मस्जिद नमीरा का कुछ हिस्सा अरफात से बाहर है और कुछ हिस्सा अंदर है। तो आपको अपने खेमे में रहना है कि इस वक्त लाखों लोग मौजूद हैं तो तकसीम कारी है, सारे लोग मस्जिद नबीरा में आ जाएंगे, सारे लोग जबल रहमत पर आ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आप अपने खेमे में रहें, किसी का खेमा बिल्कुल करीब है तो आ जाए और जबल रहमत की तरफ आ जाए, वहाँ वकूफ़ करे आके कि यहाँ वकूफ़ प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मुबारक जगह है, एक मुबारक मौका है। और उसके बाद वैसे तो मुस्तहब ये है कि इस तरह वकूफ़ करे कि इसके ऊपर छत ना हो, बिल्कुल मतलब आसमान नज़र आए, लेकिन सख्त दोपहर में मुश्किल है, अपने खेमे में ठहरना होगा। फिर जब दिन ढल जाता है और तपिश कम हो जाती है तो बाहर आ जाए ख़ासतौर पर असर के बाद, और फिर गिरिया करता रहे और फिर इल्तिजाएं करता रहे, अपने लिए भी दुआ करे, अपने वालदेन के लिए, असातिज़ा के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अज़ीज़ा अहिब्बा अक्रिबा के लिए, और हम जैसे गुनाहगारों को भी अगर याद रखे तो ज़हन नवाज़िश मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह पाक इसका आपको जज़ा अता फरमाएगा, बदला अता फरमाएगा कि आप अल्लाह के लिए दुआ करेंगे।
ठीक,
आप हमारे रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, साथी नहीं, अल्लाह के लिए दुआ करेंगे तो नेकी मिलेगी। तो यूं मगरिब तक, मगरिब का हिस्सा मतलब वक्त आ जाना ज़रूरी है।
ठीक है जी। सर अब ये फरमाएं कि मुज़दलिफा जाकर पहला काम क्या करना है?
मुज़दलिफा जाके पहला काम क्या करना है? मुज़दलिफा जाके तीन काम करने होते हैं।
ठीक।
पहला काम ये करना है कि आज जब अरफात के मैदान में मगरिब का वक्त हो गया तो आपने मगरिब नहीं पढ़नी, मतलब जहर और असर जो है ये तो अपने अपने वक्तों में पढ़नी है, फिर ज़माना जो शरायत का मामला वो नहीं पाया जा रहा। लेकिन जो मुज़दलिफा में जब आप जाएंगे वहाँ जाके आपने इशा के वक्त में मगरिब और इशा पढ़नी है।
ठीक।
पहले मगरिब पढ़ेंगे और उसके बाद आप इशा की नमाज पढ़ेंगे, तो पहला काम तो आपने ये करना है।
ठीक।
दूसरा काम जो आपने करना है, रात का अक्सर हिस्सा मुज़दलिफा में गुजारना, ये सुन्नत मौक्कदा है, ये सुन्नत मौक्कदा है और ये हमारी पांचवी मसरूफियत भी है 16 मसरूफियात में से। तो वहाँ आप आराम कर लें, सो जाएं, जाग रहे हों, और इसी दौरानिए के अंदर जो है वहाँ वाशरूम जिस एरिया में होते हैं उससे थोड़ा हट कर कंकरियों के ट्रक जो है ना वो डाले जाते हैं, ढेर लगे होते हैं कंकरियों के, तो आपने जो रमी के लिए कंकरियां उठानी है वो यहीं से उठानी है।
ठीक,
उन कंकरियों को उठा लें, थोड़ा साफ कर लें, चाहे तो धो लें और अपनी थैलियों में डाल लें। बहुत सारे लोग ये जो पानी की बोतलें होते हैं उनमें डाल लेते हैं,
सही,
तो थोड़ा सा ज्यादा ले लें। पहले दिन आपने 7 कंकरियां मारनी है, दूसरे और तीसरे दिन आपने तीनों जमरों को साथ साथ जो है वो कंकरियां मारनी है, तो एक आध जाया भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा ले लें। और उसके बाद आपने इंतजार करना है फजर का वक्त शुरू होने का, सहरी का वक्त खत्म होने का आपने इंतजार करना है। ये इंतजार इसलिए करना है कि जो लफ्ज वकूफ़ मुजलिफा है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रात को जो ठहरना है ये वकूफ मुजलिफा है, वो है सुन्नत मौकदा। जो वाजिब वकूफ मुजलिफा है ये शुरू होता है इसका वक्त जब फजर का वक्त शुरू होता है। फजर का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज तुलु होने तक अगर एक लम्हा भी कोई हाजी यहाँ पाया गया तो उसका ये वाजिब अदा हो गया। सलमान भाई
जी,
बहुत सारे लोग वो हैं, लाखों लाख लोग आपको नजर आएंगे जा रहे हैं, जो रात को जाना शुरू कर देंगे,
ऐसा ही है,
लेकिन आपने ठहरे रहना है, आपने ये वाजिब अदा करके जाना है। इस वाजिब को अदा किए बगैर नहीं जाना। फिर एक तो ये वाजिब है, दूसरा ये है कि जिस तरीके से वकूफ अरफात में दुआ की कबूलियत का मौका था, यहाँ भी दुआ की कबूलियत का मौका है। और मैंने लिखा है कि इस वकूफ में आप तुलू तक बैठे रहें,
नहीं
बिल्कुल उसके बाद भी बैठने का कहा है, और आप गिरिया करते रहें, इल्तिजाए करते रहें। अच्छा, कोशिश ये करें कि आपकी गाड़ी ने कहीं भी छोड़ा है, आप रात को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें और मीना के करीब आ जाएं।
सही,
मीना के करीब आने से ये होगा कि जब सुबह आप रवाना होना शुरू होंगे तो आपका जो रश के अंदर जो चलने का मामला है वो कम हो जाएगा।
सही,
लेकिन ये उस वक्त है कि आपको स्पेस मिले। अगर आगे जगह ही नहीं है, लोग लेटे हुए हैं, तो फिर लोगों को रोंदना नहीं है, हालात के मुताबिक आपने फैसला करना है। किसी को जरर नहीं पहुंचना चाहिए आपकी वजह से। अच्छा, हम लोग थे ना काफिले में, तो बड़ा जज्बाती माहौल था और जनता भी एक एक चीज को अदा करना है। हमारे काफिले वालों ने क्या किया कि नमाज अपना पढ़ी फजर की, वकूफ तो हो गया, चलो भी चलते हैं। मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई भी साथ नहीं। बड़ी मुश्किल से एक बंदा रुका, तो भैया आप रुक जाओ, हम जरा दुआ करेंगे फिर जाएंगे। ठीक है, अभी ये लोग चले हैं और फिर वापस आ गए। पता चला कि अमीर सुन्नत काल पर आ गए हैं, वो जो गए थे उनमें से किसी का रब्ता हुआ और अब दुआ हो गई, तो सारे वापस आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी मिल गई। तो यूं एक मौका है, थोड़ा जल्दी ना करें।
सही,
ये वो मौका है जो कबूलियत का मौका है। और यहाँ वो कहा गया है कि आज के दिन वादा है कुल इबाद माफ करने का, और माफ करने की सूरत ये बयान की किताबों में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम डाल देगा कयामत के दिन उस बंदे के दिल में कि जो साहिब हक है, और वो अपना हक माफ कर देगा। तो कितनी अजीम बशारत है, वकूफ़े जो अरफात हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहाँ आपके वो गुनाह माफ किए जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से था, सारे गुनाह माफ कर दिए, छोटे भी बड़े भी, पोशीदा भी ज़ाहरी भी। और जब आपने वकूफ़े मुजरिफा किया है तो आपके वो गुनाह माफ करने का वादा किया गया जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। रात में चले जाएंगे, वकूफ का वक्त नहीं मिलेगा, एक तो वाजिब तर्क हुआ और दूसरा इतनी जो अजीम सादत मिलनी थी वो अजीम सादत नहीं मिल सकेगी।
ठीक है सर, शॉर्ट शॉर्ट सवालों के जवाब भी हो जाए।
जी,
ये बताइए
जी, और भी हाजियों के लिए रहनुमाई हो जाएगी, जो खास तौर पर 10 जुलहिज्जा का दिन है, उस दिन जो एक्सपेक्टेड हमारे निजामुल औकात के मुताबिक सुबह 4:16 से लेकर 5:39, तो 40 समझ लें, 4:16 से 5:40 के दरमियान जो है ना, ये फजर का वक्त है। जैसे आपने कहा ना, लोग पहले नमाज पढ़ लेते हैं, तो उनकी रहनुमाई के लिए।
अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे 27 वाजिबात हैं, 27 वाजिबात में जो वकूफ मुजलिफा का चैप्टर है, तो जैसे ये लिखा हुआ है कि वकूफ मुजलिफा इशा के वक्त में इशा पढ़ना, तो तो यहाँ ये एक डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट, तो यहाँ हमने एक फाइल डाल दी है, इसको जब कोई स्कैन करेगा तो पूरे साल ईशा का वक्त मुज़दलिफा में क्या होता है इस फाइल में आ जाएगा।
वाह 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 वाह।
अच्छा, फिर आगे जो है, आगे जाके एक फाइल है उसमें डाल दी है कि सूरज तुलू होने तक ठहरना है, फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है ये यहाँ मौजूद है। तो यानी इसके अलावा मकतबतुल मदीना ने पॉकेट साइज में पूरे साल का वो जारी भी किया है, अब्दुल आप दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मदीना मदीना लाजवाब किताब है सर,
साइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। शॉर्ट शॉर्ट सवालों के जवाब भी हो जाए। शैतान को मारने के लिए बड़ी कंकरियां ले सकते हैं?
बड़ी से कम है, ईंट
बड़ी बड़ी यानी आम साइज से ज्यादा बड़ी हो?
देखिए, छोटी कंकरी होनी चाहिए, और असल तो ये है कि ये अमल एक इबादत है, इबादत के अंदर वकार होता है और हुस्न होता है, और इबादत के अंदर जज्बात और अपना जो कयास है उसको अमल दखल नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक शख्स ये कहे कि रोज़ा है, मैं मगरिब के वक्त रोज़ा क्यों खोलूं, मैं तो इतनी ताकत है मेरे अंदर, मैं तो अगले दिन भी जो ना वो बगैर से ये कर सकता हूँ। तो यहाँ अपने जज्बात को पस पुश्त रखना है और आपने सुन्नत पर अमल करना है। आपने ये देखना है कि भाई इफ्तार भी करना सुन्नत है, तो आप इफ्तार करेंगे। ठीक है, फिर आप जब ये इस तरह के जज्बात तारी हो जाएंगे तो फिर नतीजा ये होगा कि दो दिन बीमार पड़े होंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो ये जो जज्बात है ना कि जुती मारना और फला चीज मारना फला चीज मारना, ये जहालत है, ये जज्बात नहीं है। क्योंकि इबादत के अंदर हम उस चीज को फॉलो करने के पाबंद हैं जिसका हमें बताया गया है। तो सुन्नत से जो तरीका साबित है, सुन्नत में जो तरीका बताया गया है, हम उसी को फॉलो करेंगे। ये थोड़ी है कि जनाब वहाँ शैतान साहब खड़े हुए हैं और आपने तेज मारा तो ज्यादा तकलीफ होगी, असल तकलीफ होगी उसको आपकी हुस्ने नीयत से, आपकी अदायगी सुन्नत से। आपका अमल जितना ज्यादा जामे होगा उतना ज्यादा शैतान गमजदा होगा और उसको तकलीफ पहुंचेगी कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बताया उस तरीके पर आपने अमल किया, खलूस पर आपने अमल किया, रियाकारी आपकी नहीं। कहीं ये तो नहीं कि आप फोटो के चक्कर में जज्बात में आ गए कि मेरी कोई वीडियो बना रहा है चलो वायरल हो जाएगी, मैं यूं करूं यूं करूं। और ऐसे मौके पर जो अजीबोगरीब वीडियो आती है उसको वायरल भी नहीं करना
चाहिए। ठीक है जी। सर अब यहाँ एक और सवाल है, ज्यादा कंकरियां मार सकते हैं शैतान को गुस्सा आने पर, या बोतल ही कंकरियों की भरी मार दें उसको?
मैंने अर्ज किया ना कि अपने जज्बात पसे पुश्त रख के सुन्नत पर अमल करना है कि हमें बताया क्या गया है, हम उस पर अमल करेंगे।
मरहबा। और कंकरी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, जरा ये भी बता दें।
कंकरी की जो मिकदार फिक्र में लिखी है, खजूर की जो गुठली है उसके बराबर कहा गया है।
ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी खजूर की गुठली के बराबर कंकरी मिलेगी, उससे थोड़ी बड़ी भी मिल जाती है, तो आप तलाश करेंगे तो आपको नजर आएगी।
ठीक है जी। कंकरियां मारने से पहले ही अगर मैसेज आ गया कि आपकी कुर्बानी हो गई है तो अब क्या होगा?
वैसे तो मैसेज नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहे।
ठीक है,
इसलिए कि गवर्नमेंट ने पैसे वापस दे दिए। तो वो जो सरकारी स्कीम में जो लोग जाते थे तो उनकी जो ना कुर्बानियां वहां फिर बैंक से होती थी, तो वो मैसेज का इंतजार करते होंगे। अब कुर्बानियां आपने खुद करनी है।
ठीक,
जब आपने खुद करनी है तो फिर आपने मुआहदा भी करना है कि भाई जब मैं फोन करूं फिर मेरी कुर्बानी होनी चाहिए।
नहीं,
नेटवर्क भी जाम हो जाता है।
नहीं,
बाज़ औक़ात जिसको आपने फोन करना है ना वो गायब हो जाता है। जो फ्राडिया लोग हैं ना वो आजियों से पैसे पकड़ते हैं, हम आपकी कुर्बानी करेंगे हमारे पास जानवर खड़ा हुआ है, वो दो तरह के फ्रॉड करते हैं। या तो वो ये करते हैं कि 50 बकरियां 5,000 लोगों को दिखाते हैं।
ओहो,
एक काफले वाले को दिखा दी, दूसरे वाले को दिखा दी, तीसरे वाले को दिखा दी, सबसे पैसे पकड़े और सबको मैसेज डाल दिया, हो गई कुर्बानी। ऐसे भी मामलात हुए हैं। या वो ये फ्रॉड करते हैं कि सबसे पैसा पकड़ के भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो देखभाल के काम लेना है। बेहतर तरीका ये होता है कि जो ओपन मंडी है, ओपन मंडी में दो तीन जगहों पर ओपन मंडी लगती है, अब तो अभी कहाँ कहाँ लगती है?
एक काकिया से थोड़ा सा आगे जाकर अब नया इलाका बन गया, पहले काकिया में थी, अब वो भी हुदूद-ए-हरम में ही है और एक जो है मीना से थोड़ा सा मुजदलिफा से आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर एक है, एक जगह नाम भूल
सुकुल
गया,
हामा भी है कोई?
वो जहाँ गए थे ना मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह का
जहाँ
नाम,
पे वो कसाब की बस्ती बनी हुई है पूरी?
भाई कसाब की बस्ती भी और
ठीक है
बकायदा वहाँ कुर्बान गाह भी है, बड़ी
ठीक
जबरदस्त
है।
है माशाल्लाह, जहाँ हम लोग
देखिए
गए थे लास्ट टाइम में।
इसके लिए ना आपको ऑफ सीजन में यानी 5 जुलहिज्जा से पहले पहले ऑफ सीजन है एक तरह से, उसके बाद तो सब पैक हो जाता है, सड़क बंद हो जाते हैं, तो आप पहले से जाके इन दोनों तीनों जगहों को देख आए और एक रफली बात कर कर आ जाएं कि भाई यहाँ क्या मामला है क्या नहीं है, और कोशिश ये करें कि 10-15-20 अफराद एक साथ ग्रुप बना लें कि भाई हमारी कुर्बानियाँ जो हैं हम एक साथ करेंगे। बड़ा ग्रुप बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, छोटा बनाएं और फिर इस ग्रुप के दो नुमाइंदे मुकर्रर कर दें। जब 10वां दिन आए तो कोई जल्दी नहीं करनी है, अगर आप आज आपकी कुर्बानी नहीं होती कोई इशू नहीं है, आपने रमी कर दी, रमी करके आप फारिग हो जाएं, बैठे रहें इंतज़ार करें, कुर्बानी कल हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन के अंदर कुर्बानी होनी चाहिए, 30वें दिन की मगरिब से पहले पहले तक। तो आप 10वें दिन को रमी करने के बाद अपने दो साथियों को रवाना कर दें कि जाओ भाई, आप अगर काकिया की तरफ गए थे तो वहाँ आपने जाना है। सबसे पहला मरला होगा मीना से निकलें कैसे, निकल गए तो आगे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, बाइक वाला भी कहेगा 1000 रियाल लूंगा मैं वहां जाने के। थोड़ा सा ग्रुप बनाने का ये फायदा होगा कि ये एक्सपेंस डिवाइड हो जाएंगे सबके ऊपर।
नहीं
अब ये जाएं 3-4 बंदे चले जाएं जो तो ताकतवर लोग हों, और जाके वहां पे जानवर देखें, दो दांत वाला जानवर, वरना वहां छोटे छोटे जानवरों को भी कह रहे होंगे कामिल हाजा कामिल हाजा कामिल, तो देखभाल के जो आपको कामिल नजर आए, आप जिस पर मुतमिन हो उसको आप अलग करते जाएं, अलग करते जाएं, और उसको फिर कसाब वहां पर होगा उससे वो आप जबा करवा लें, गोश्त उनके वाले कर दें कि जो चाहो उसका करो। असल है खून बहाना। कुर्बानी करने से पहले अफराद मुतय्यन करें कि भाई ये कुर्बानी इसकी हो रही है, ये इसकी हो रही है, ये इसकी हो रही है, ये इसकी हो रही है। जानवर मुतय्यन करना है किस फर्द का कौन सा जानवर है, ये मुतय्यन करना बेहद ज़रूरी है वरना कुर्बानी नहीं होगी।
ठीक,
यूं जाके आप कुर्बानियाँ करें और उसके बाद अपने वापस आ जाएं। ये वो तरीका है जो बहुत फेयर है। जो स्लॉटर हाउस है वहाँ भी कुछ इस तरह का होता है, चॉइस होती है, आप जानवर अलग करते हैं उसके बाद उनके हवाले कर देते हैं, वो कुर्बान कर देते हैं, फिर आप अपने साथियों को मैसेज कर दें कि जी आप इत्मीनान से अब एहराम खोल दें। क्योंकि
नहीं
3 चीज़ें हैं, पहले रमी होनी है, फिर कुर्बानी होनी है, और उसके बाद हलक और तकसीर करके एहराम खोले जाएंगे। जब आपने 2 दिन से 3 दिन से एहराम पहना हुआ है तो क्या दिक्कत है, आप क्यों इतनी जल्दी है कि 1 दिन की वजह से आप चाह रहे हैं बस फौरन हो जाए बस फौरन हो जाए। तो जब लाखों लाख का मजमा मौजूद है तो हालात अप डाउन हो जाते हैं, तो वहां आपको हालात के मुताबिक चलना है।
नहीं
अप डाउन हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है,
एक दूसरे का खुद ही हल कर सकते हैं। हाँ जी,
अगर वो मौका आ गया जिसको वक्त तहल्लुल कहते हैं कि भाई अब हाजी ने अफआल अदा कर लिए हैं, जैसे उमरा करने वाला है, अगर उमरा करने वाले ने तवाफ कर लिया सही कर ली तो अब वक्त तहल्लुल आ गया।
ठीक
है भाई, अब अफआल अदा हो गए, अब हलक का वक्त आ गया है। दूसरा मौका ये है जैसा कि हज है, हज में उसने रमी कर ली है, रमी करने के बाद कुर्बानी भी हो गई है, कुर्बानी होने के बाद वक्त तहलुल आ गया है।
नहीं
तो जब वक्त तहलुल आ जाए तो जो उस तरह चला रहा है उसका और जिसका हलक हो रहा है उसका दोनों का वक्त तहलुल आ गया तो बिल्कुल वो हलक करवा सकता है और ये हलक कर सकता है।
ठीक है, जीरो की मशीन से हलक जो है वो हो जाएगा, जीरो की मशीन बाद उसका सर पे घुमा रहे होते हैं।
मैंने अपनी किताब में तो ये लिखा है कि भाई मशीनें तरह तरह की आ रही हैं और हमें इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो मैंने कार्रवाई देखी है जीरो की मशीन की, उसका जो अमल है बिल्कुल उस तरह की तरह ही होता है। तो थोड़ा सा तरद्दुद तो है, लेकिन इसको इस पर जो अकाबिर उलमा हैं मैं समझता हूँ कि उनको अपनी राय देनी चाहिए ताकि उसकी रोशनी में ही हम जैसे छोटे जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकें।
सर ये बताइए कि तवाफ़ ज़ियारा कब किया जा सकता है?
तवाफ़ ज़ियारा का वक्त शुरू होता है जो 10वां दिन है हमारा, तवाफ़ ज़ियारा 10वीं तारीख को करना होता है, 10 जुलहिज्जा की फजर का वक्त शुरू होने से, فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے یعنی جب طلوع فجر ہو گئی اس وقت سے لے کے طواف زیارہ کیا جا سکتا ہے؟
نہیں
یعنی کسی قربانی نہیں ہوئی اور وہ طواف زیارہ کر کر آ گیا حالت احرام میں ہی ہے تب بھی ہو سکتا ہے، بہتر یہ کہ قربانی کے بعد اور احرام کی چادر اتار کے یعنی وقت تعلق ڈال جائے اور حلق کے تقصیر کر کے پھر طواف زیارہ کر کر آئے، یہ ہے بہتر وقت۔ لیکن پرابلم بڑی ہے، پہلے دن جا کر طواف زیارہ کرنا ہر شخص کے لیے اتنا آسان نہیں ہے،
ٹھیک،
بڑا مشکل ہے۔ تو کوئی وسعت کی طرف اگر جانا چاہے، آسانی کی طرف جانا چاہے، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پہلے دن تو قربانی لمبا وقت لے جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دن آپ رات کو بھی جاگے ہوئے ہیں، مزدلفہ سے آئے ہیں، مزدلفہ سے آنے کے بعد آپ نے آج بڑے ہی رش کے اندر رمی کی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کی ہے، پھر آپ نے حلق کیا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے، آج آپ پورا دن آرام کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، اگلا دن جب شروع ہوگا تو اگلے دن آپ تھوڑا سا سپہر ہونے کا انتظار کریں، جب تھوڑا سا سپہر کا ماحول ہو جائے، تین چار بج جائیں، کسی کا خیمہ نزدیک ہے تو تھوڑا سا اور تاخیر کر لے، خیمہ اگر دور ہے تو وہ پھر تین چار بجے نکل پڑے، اور نکلے اس ارادے سے کہ میں نے مکہ مکرمہ جانا ہے، پہلے میں نے رمی کرنی ہے، نکلے گا سیدھا خیموں سے، رمی کرے گا، رمی کرنے کے بعد تینوں جمعرات کو رمی کرنی ہے آج، اور جو رمی آج ہماری باقی رہ گئی ہے اللہ نے چاہ تو ہم رمی سے کل مزید ڈیٹیل میں چلے جائیں گے،
ٹھیک ہے۔
اب رمی کرنے کے بعد اب آپ کا منہ سیدھا ہے، آپ سیدھا منہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، کچھ سواری مل جاتی ہے تو سواری پکڑ لیں، اور سواری نہیں ملتی تو پیدل چلتے رہیں۔ اب آپ جا کے جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں تو عشاء کا انتظار کریں، عشاء کے بعد بھی تھوڑا سا آرام کر لیں ایک آدھ گھنٹہ، تھوڑا سا رش چھٹ جائے گا، اور پھر جا کے آپ طواف زیارت کریں، ٹھنڈا وقت بھی ہوگا، رش بھی کم ہو گیا ہوگا، اور آپ ایک ہی ساتھ نکلے ہیں، یہ نہیں کہ آپ رمی کی پھر دوبارہ گئے پھر واپس آئے، اور پھر رات کو ہی آپ دوبارہ چلے جائیں تاکہ رات کا جو اکثر حصہ ہے آپ کا وہ مینا میں گزرے اور سنت موقع جو ہے وہ ادا ہو سکے۔
طواف زیارہ کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ صحیح بھی ہو جائے گی پھر؟
ہاں صحیح، اگر پہلے نہیں کی تھی تو صحیح بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہیں، اگر پہلے آپ صحیح کر چکے ہیں حج کی صحیح۔ اچھا بعض لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کچھ صحیح ہوتی ہے، حج کی صحیح بھی ایک جدا گانا عمل ہے اور حج کا ایک واجب ہے،
اس کی ڈیٹیل بھی استاد صاحب نے حج کی واجبات میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ سعی کرنا اور جو ہے وہ پیدل سعی کرنا، یہ بھی ایک الگ اس کا جو ہے وہ واجب ہے، پھر چکر پورا کرنا یہ بھی، اور پھر صفا سے شروع کرنا یہ بھی کیا ہے اس کا واجب ہے۔ تو 27 واجبات حج میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں اور جو سمجھ نہ آئے وہ پھر آپ جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اللهم لبيك خداك فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔